सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की सिक्किम और उत्तर प्रदेश यात्रा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने जी। तो जगदीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
तो सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम में हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, ये परियोजनाएं आपको इन इलाकों के विकास से जुड़ी से किस तरह से आपको लगता है कि फायदा पहुंचाएंगी?
सिक्किम बहुत अनोखा राज्य है और 75 में जब इसने अपने विलय का प्रस्ताव पारित किया और भारतीय संसद ने 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसके विलय को मंजूरी दी, तब से उसके बाद से जो प्रगति हुई है और पिछले 11 सालों में तो अभूतपूर्व। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये ऐसा अकेला राज्य है जिसके सभी डिस्ट्रिक्ट सभी जिले फ्रंट रनर्स हैं पिछले 11 साल में हुआ है।
बिल्कुल,
ये ऐसा राज्य है जिसमें प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम देश में सबसे ज्यादा है। यह ऐसा राज्य है जिसमें साक्षरता की दर 90%। यह ऐसा राज्य है जहां पर महिला वर्कर्स 60% से ज्यादा हैं। यह ऐसा राज्य है जहां उद्योग हैं और मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मास्यूटिकल है, सर्विस सेक्टर है और फिर पर्यटन है। ये तीन बड़े, और प्रधानमंत्री ने आज जो 4,000 करोड़ से ज्यादा लगभग की योजनाओं का शुभारंभ शिलान्यास किया है वो सब इन क्षेत्रों को स्पर्श करती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सिक्किम के लोग बहुत स्वस्थ हैं, हम भारत के एवरेज। और सिक्किम अकेला ऐसा राज्य है जहां पर गरीबी 2.2% है, भारत के औसत से बहुत ही कम
जी।
तो एक अनोखा राज्य है और प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट रीजन पर जब से और भाजपा और एनडीए की सरकार आई है लगातार, पहले तो एक्ट ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट रीजन था, अब एक्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो उसमें सिक्किम सर्वोपरि है। और प्रधानमंत्री ने अपनी सिक्किम यात्रा कल से शुरू हुई थी, 27 दिन पहले वो दोपहर को पहुंचे थे बंगाल से, पश्चिम बंगाल से चुनाव प्रचार के बाद
जी।
और हमने देखा कि उन्होंने बच्चों के साथ फुटबॉल खेला, तो खेल के लिए भी बड़ा, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत सारा पैसा केंद्र ने सिक्किम को दिया है और सिक्किम की प्रतिभाएं हम सब क्षेत्रों में देखते हैं। मैं समझता हूँ कि सिक्किम के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए जो केंद्र सरकार पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा से उसको बल मिलेगा और सिक्किम नॉर्थ ईस्ट रीजन का सबसे विकसित और सबसे एडवांस राज्य बनकर उभरेगा।
बिल्कुल, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने सिक्किम की साफ सफाई की भी काफी तारीफ की है, आपके हिसाब से देश के बाकी राज्यों को इससे किस तरह से सीख लेनी चाहिए?
जो लोग गैंगटॉक गए हैं, मैं गया हूँ और मुझे पता है कि वहाँ लोग स्वच्छता के प्रति बहुत संवेदनशील है। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान, आपको ध्यान होगा कि लाल किले से पहला जो उन्होंने संबोधन किया था राष्ट्र के नाम, उन्होंने कहा था कि इस बार से मैं एक कठिन काम हाथ में ले रहा हूँ और वो है स्वच्छ भारत मिशन का। तो ये सचमुच भारत के लिए बहुत कठिन है, लेकिन सिक्किम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने किस तरह कचरे के निपटान की, असल में कचरा फेंक कर जमा करना ही पर्याप्त नहीं, उसके निपटान तक की व्यवस्था की हुई है और उससे भी वो ऊर्जा पैदा करते हैं।
आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के टूरिज्म को लेकर क्या कुछ कहा।
साथियों, हमारे सिक्किम की बहुत बड़ी ताकत उसकी टूरिज्म इकोनॉमी है। सिक्किम के टूरिज्म से यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोगों की आय जुड़ी हुई है और टूरिज्म तभी बढ़ता है, उस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़िया हो तब बढ़ता है। इसलिए हम सिक्किम की कनेक्टिविटी और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बागडोगरा से गंगटोक तक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, सेवोक रंगपुर रेल लाइन हो, ये प्रोजेक्ट सिक्किम को पूरे देश से जोड़ने का जरिया बन रहे हैं। यहाँ नए नेशनल हाईवे उसका भी निर्माण किया जा रहा है। गंगटोक जैसे शहरों में रिंग रोड जैसी परियोजनाएं भविष्य के लिए जरूरी है, इस दिशा में भी काम आगे बढ़ रहा है।
तो जगदीश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि टूरिज्म की सिक्किम में अपार संभावनाएं हैं, आपको क्या लगता है और कौन से पर्यटक स्थल हैं जो लोगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं?
देखिए, सिक्किम में लोगों ने सिक्किम को सिर्फ गैंगटॉक तक एक्सप्लोर किया है, लेकिन जिन जिलों में आज कनेक्टिविटी संचार के नेटवर्क की योजनाओं का शुभारंभ हुआ या उसका शिलान्यास हुआ, लॉन्च की गई, उन सब जिलों में आप जाएंगे। जैसे एक आर्केड गए थे वो कल प्रधानमंत्री, जो मतलब फूलों और फलों का, तो उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि किस तरह से लोग जो हैं और फूलों फलों की खेती कर रहे हैं, उसके आर्केड बना रहे हैं, उससे भी फायदा कमा रहे हैं। तो इन स्थानों को देखने की जरूरत है, किस तरह से आर्केड को उन्होंने डेवलप किया है। और चूंकि ये पहाड़ी राज्य है, ऊपर नीचे समतल भूमि नहीं है, ऊपर नीचे का हिस्सा है, उसके बाद भी आप ऑर्किड्स, आप पूरे सिक्किम भर में ऑर्किड्स अलग अलग फूलों के फलों के आप देखते रह जाएंगे कि ऐसा दृश्य यूरोप की भी और कई देशों में देखने को नहीं मिलता जो सिक्किम में मिलता है। मैं समझता हूँ कि सिक्किम के सभी जिले पर्यटकों के लिए, और अब जो कनेक्टिविटी पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया वो इसीलिए दे रहे हैं कि उससे सब जगह लोग जा सकेंगे और सब जगह वो घूम सकते।
बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा जगदीश जी कि जिस तरह से सिक्किम में सड़क और रेल यातायात को बढ़ावा दिया जा रहा है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इससे आप किस तरह से देखते हैं कि वहां के स्थानीय लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा?
देखिए, स्थानीय लोग जो वहां के मूल निवासी तो लेप्चा भूटिया है, नेपाली बड़ी संख्या में नेपाली आबादी है, और ये सब मिलकर एक शांतिप्रिय प्रदेश और एक शांतिप्रिय और विकासशील उन्नति की ओर बढ़ता प्रदेश लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार पिछले 11 साल से कनेक्टिविटी पर बहुत जोर है, जो सड़कें बहुत छोटे स्थानों पर भी नहीं जाती थी, वो जैसे अब सिक्किम में गैंगटोक में उन्होंने और फ्लाईओवर का जिक्र किया, ऐसे कई फ्लाईओवर अभी बनने वाले हैं, वो पाइपलाइन में कई सारी योजनाएं हैं केंद्र की। और जैसे यूरोप में आप स्विट्जरलैंड कभी जाएं तो देखेंगे कि स्विट्जरलैंड की जो आल्प्स पहाड़ियां हैं उन तक भी ऐसे रास्ते बने हुए कि पर्यटक आराम से जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जो विजन है केंद्र सरकार का वो सिक्किम को एक ऐसे ही प्रदेश के रूप में डेवलप करना है ताकि संचार का नेटवर्क रहे और सड़क का मार्ग हो चाहे वो हवाई यातायात का मार्ग हो, इन दोनों मार्गों पर वो हर मौसम में चलते रहे, इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। और आज की जो योजना प्रधानमंत्री ने वहां की है, उद्घाटित की है या शुभारंभ किया है उनका, उन सब में ये बातें दिखती
है। जगदीश जी, आमतौर पर देखने को मिलता रहा है कि जो उत्तर पूर्वी राज्य रहे हैं वहां पर वो तमाम सुविधाएं नहीं होती थी जो देश के बाकी हिस्सों में रहती थी, अब लेकिन ये ट्रेंड बदला है और तमाम चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें या कनेक्टिविटी की, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी उसी तरह से दी जा रही है जैसे देश के बाकी हिस्सों में है, तो इससे क्या एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा?
देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी बहुत जरूरत है। अब जैसे सिक्किम में ही कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जैसे असम को अगर आप मेघालय चले जाए, अरुणाचल चले जाए, अरुणाचल में भी खासतौर पर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। जैसे सिक्किम में ही कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री ने आज जो योजनाओं की आधारशिला रखी है या उद्घाटन किया है वो जिलों को जोड़ने वाली है, उसमें कहीं कहीं बड़े पुल भी हैं, सड़क चौड़ी भी की जा रही है और इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी किस तरह से बढ़े जिससे कि लोग आ जा सकें और माल की ढुलाई भी ठीक ठाक हो सके। उत्तर पूर्व में इसकी बहुत जरूरत बहुत वर्षों से और महसूस की जा रही थी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार उस पर भरपूर ध्यान दे रही है। पूरे उत्तर क्षेत्र में इस समय सड़क का कनेक्टिविटी जबरदस्त ढंग से चल रही है, पुल बन रहा है, सीमा पर भी बड़ी सड़कें बन रही हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी और बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि से भी ये सभी योजनाएं और बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्किम उसमें सबसे आगे है। सिक्किम के लोगों की तारीफ प्रधानमंत्री ने 3-4 बार अपने भाषण में की, तो इसलिए कि सिक्किम के लोग बहुत डिसिप्लिन है और अपने राज्य को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बना के रखने के लिए हमेशा से कृत संकल्प रहे हैं।
बिल्कुल, और आपको क्या लगता है कि खेलों में भी वहां के युवाओं को जिस तरह से ज्यादा एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन उनका देखने को मिल रहा है, तो क्या स्पोर्ट्स में और ज्यादा मौके बढ़ेंगे वहां से?
हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, पर्यटन, तीर्थ यात्रा, पर्यावरण संरक्षण, बिजली, हेल्थ, ये तो किया ही है उन्होंने, लेकिन आप देखें कि उन्होंने कुछ स्टेडियम्स जहां ऑलरेडी खेल की सुविधाएं मौजूद हैं जिलों में उसका भी, और पाक्योंग जिले में जैसे माइनिंग, रंगपो में इंडोर क्रिकेट स्टेडियम, ये जो 3-4 छोटी छोटी योजनाएं, लेकिन प्रधानमंत्री के हाथों इनका उद्घाटन होने से और जो सिक्किम के खेल प्रेमी युवा है उनको बड़ा उत्साह हुआ है। उनकी सभाओं में युवाओं की उपस्थिति बड़ी संख्या में थी, महिलाओं की और युवाओं की, तो उससे ये पता लगता है कि लोग इसको बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं कि वो छोटी छोटी योजनाओं की परिकल्पना कर रहे हैं और उसको ठोस रूप में साकार कर रहे हैं और उसका उद्घाटन भी स्वयं कर रहे हैं, तो युवा भागीदारी बढ़ेगी और स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। वैसे भी सिक्किम से बहुत लोग अलग अलग खेलों में जाते हैं, फुटबॉल को हम आमतौर पर देखते हैं, लेकिन दूसरे खेलों में भी सिक्किम के खिलाड़ी जा रहे हैं, देश में उनका नाम है। अगर आप लिस्ट निकाल के देखें तो सिक्किम के अननोन खिलाड़ी बहुत हैं।
बिल्कुल, इस चर्चा को उत्तर पूर्वी राज्यों से लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आज क्या कहा।
2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। काशी से पुणे और अयोध्या से मुंबई, ये दोनों अमृत भारत ट्रेनें यूपी और महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। अब मुंबई पुणे सहित पूरे महाराष्ट्र के लोगों को अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने का एक और आधुनिक विकल्प मिल गया है। मैं इस शुभ आरंभ के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं।
तो जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में भी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, तो ये राज्य के विकास में कितना अहम योगदान देंगी परियोजनाएं?
6,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का आज एक बहुत बड़ा महिला सम्मेलन चल रहा है बनारस काशी में, और हजारों की संख्या में दो दो घंटे से लोग महिलाएं बैठी हुई है अपने प्रतिनिधि को सुनने के लिए, जानने के लिए कि वो क्या कहते हैं। और नारी वंदन अधिनियम को जिस तरह से विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया, उसका भी गुस्सा उनके अंदर है। लेकिन हर बार जब भी काशी प्रधानमंत्री जाते हैं तो बड़ी सौगात देते हैं, न केवल काशी को बल्कि उत्तर प्रदेश को। इस बार भी उन्होंने दी है, काशी को मुंबई से, अयोध्या को मुंबई से, काशी को पुणे से जोड़ने की अमृत भारत 3 ट्रेनें शुरू हुई हैं। इसके अलावा सड़क के अनेक परियोजनाएं शुरू हुई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। न केवल इससे काशी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, जो हाल फिलहाल में काशी गया है उसको देखकर ताज्जुब होता है कि ये वही काशी है जिसमें कभी वो 5 साल पहले आया था। काशी बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन अपने आध्यात्मिक स्वरूप को बदले बिना, और उसको एक आधुनिक रूप में और प्रस्तुत कर रही है काशी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज जो 6,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उन्होंने घोषित की है, उद्घाटन भी है कईयों का, भूमि पूजन मतलब शिलान्यास भी है, उन सबका सबसे उत्तर प्रदेश को बल मिलेगा, और खासतौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश को, जहां पर कि विकास के बारे में बहुत इस ध्यान से नहीं सोचा गया जितना प्रधानमंत्री काशी के जनप्रतिनिधि होने के नाते सोच रहे हैं।
आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन पर क्या कहा।
आज इस कार्यक्रम में आप सभी बहनों बेटियों से एक महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूं। काशी के सांसद के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, और ये बड़ा लक्ष्य है लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना।
प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन पर भी जो बातें कही उससे आपको क्या लगता है वहां की महिलाओं का मोराल किस तरह से बूस्ट होगा और ये बातें उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचाएंगी?
देश भर की महिलाओं में मतलब ये बात तो है कि भाई ये क्यों नहीं पास हुआ, इतने साल से पिछली सरकारों ने इसको लटका के रखा 28-30 साल से, अब मोदी जी की सरकार इसको पास करने पर तुली हुई तो आपने क्यों अड़ंगा लगा दिया। और अगर वो मोदी सरकार इसको नई जनगणना के आधार पर करना चाहती तो इससे महिलाओं की सीटें बढ़ती, ये गुस्सा है महिलाओं में, और मैं समझता हूं कि इसी के कारण महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति और आपको देखने को मिलती है उनकी सभा में। और महिलाओं में एक धारणा तो है, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में और काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और उनको लगता है कि अगर ये आरक्षण भी मिल गया प्रतिनिधित्व का संसद विधायक और विधायिकाओं में, तो उससे उनकी स्थिति समाज में मजबूत होगी, सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी, राजनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी, और वित्तीय स्थिति तो उनकी मजबूत होगी ही होगी। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने इसी पॉइंट को अपने भाषण में छुआ है, उन्होंने कोई राजनीतिक भाषण उनका नहीं है, मैं सुन रहा था अभी, कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, उन्होंने जैसा प्रण किया है कि ये पास होकर रहेगा उसी बात को वो दूसरे अंदाज में कह रहे हैं।
और आपसे एक आखिरी छोटा सा जवाब चाहेंगे कि पिछले दिनों हमने तमाम भारत गौरव ट्रेनों का शुभारंभ होते हुए देखा, और ये ट्रेनें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के काशी हो या अयोध्या, इन जगहों से होकर जरूर गुजरती हैं, तो आने वाले दिनों में इसका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर, टूरिज्म पर कितना बड़ा प्रभाव आप आते हैं?
देखिए अभी पड़ रहा है, अभी आप ये ट्रेनों में कभी बैठ के, मैं तो अभी गया हूँ 2 बार, काशी गया हूँ, अयोध्या गया हूँ 2-3 बार, भर के जाती है, जगह नहीं मिलती, मतलब आपने अगर समय पर बुकिंग नहीं कराई तो आपको टिकट नहीं मिलती, तो ये इससे पता लगता है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। जब टूरिज्म के साथ दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती हैं जिससे बल मिलता है, उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को भी इससे बल मिलेगा, और ये उत्तर प्रदेश काशी के प्रधानमंत्री होने के कारण पूरे उत्तर प्रदेश को बल मिल रहा है, उसके डेवलपमेंट को बल मिल रहा है, और इन ट्रेनों से तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लोग खुद ही कहते हैं कि ऐसी ट्रेनें उन्होंने पहले हमको मिली होती तो उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंचता, लेकिन अब पहुंचेगा और उस जगह पहुंचेगा जहां उसकी आस है उसको।
बिल्कुल, जाहिर है, तो इंतजार करना चाहिए कि इन सारी सुविधाओं का, सहूलियतों का किस तरह से फायदा लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा। जगदीश जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में